नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं मिताली आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कड़ी में हमने देखा था कि माफ करना कितना जरूरी है। अगर हम अपने आप को प्यार करते, अपने आप को स्वीकार करते, तो हमारे लिए माफी देना भी आसान है। बहुत सारी गहरी बातें हमको डॉक्टर सचिन ने बताई। आज के सत्र में हम इसी पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति।
फॉरगिवनेस, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सूक्ष्म है। आपने बहुत गहरी बातें हमको बताई, लेकिन और भी कई सवाल मन में है कि जैसे अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं, तो एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल बैकग्राउंड, हमारे फिजिकल बॉडी पर क्या असर हो सकता है, ये आप थोड़ा हमें समझाएंगे।
फॉरगिव नहीं करना या क्षमा नहीं करना, माना उस बात को आपने पकड़ के रखा है। मेरा तो ऐसा मानना है, और अभी साइंस भी हमको कह रहा है कि सभी बीमारियों का जड़ ये अनफॉरगिवनेस में है। हमारे शरीर के अंदर खून है जो हमेशा घूमता रहता है। अगर वो रुक गया तो समझो हम रुक गए। खून रुकना नहीं चाहिए, रुकने के बाद उसकी गांठ बन जाती है, और वो गांठ या जिसको अंग्रेजी में हम क्लॉट कहते हैं,
क्लॉट सिस्ट,
वो क्लॉट अगर हार्ट में रुक जाता है तो हार्ट अटैक आता है, ब्रेन में रुक जाता है तो पैरालिसिस होता है, पैरों में रुक जाता है तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज होते हैं। और ये सब बीमारियां खून के रुकने की वजह से या खून में गांठ हो जाने की वजह से। आज हमको ये बात पता चली है कि जो लोग अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर ऐसी गांठ बांध के रखते हैं, उनके शरीर के अंदर भी खून की गांठ हो जाती है। इट इज द थॉट क्लॉट विच लीड्स टू ब्लड क्लॉट। तो इसको इतना साधारण मत समझिएगा। तो क्षमा नहीं करना, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं। जिसको बार बार विचार आता है, जिसको हम अंग्रेजी में रिसेंटमेंट कहते हैं, रिसेंटमेंट मतलब बार बार उसको फील करते रहना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, और उसको पकड़ के रखना, तो दोनों बातें हो रही है। आपका अंदर ही अंदर शरीर खाते जा रहा है, तो इट कैन लीड टू कैंसर। रिसेंटमेंट कैन लीड टू कैंसर। अंदर गांठ बांध लेना तो खून की गांठ हो सकती है। और इनमें जो लक्षण शुरुआत में दिखाई देते हैं, जो लोग माफ नहीं कर पाते हैं, तो माफ नहीं कर पाना एक एंगर का, ये जो रिसेंटमेंट मैंने कहा या पकड़ के रखना, ये एंगर माना क्रोध का सूक्ष्म रूप है। और ये क्रोध फिर बीमारियों को जन्म देता है। इसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहला जो बहुत ऐसे बार बार अंदर चलता रहता है, और उसमें हमने क्या देखा कि इन लोगों का सबसे पहला अफेक्ट होता है वो नींद अफेक्ट होती है। क्योंकि दिन भर वो वही सोच रहे हैं, और रात को आपने ब्रेन को अननेसेसरली यूज किया, उसकी एनर्जी वेस्ट गई, तो यू कैनॉट रिलैक्स। भले आपने दिन भर अपने आप को बिजी भी रखा, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड, आपके मन के पिछले भाग में ये चल रही है चीजें, तो जैसे ही आप खाली हो जाएंगे वो पहले चीज वो याद आएंगे। हमारे पास मेडिटेशन करने भी लोग आते हैं, वो कहते हैं दिन भर हम ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ध्यान करने बैठते हैं वो सब बातें याद आने लगती है,
जैसे वो फाइल सारी खुलने लगती है साइलेंस में।
तो इसका मतलब वो फाइल कहीं गई नहीं, बैक ऑफ माइंड में है। और जब वो खुलती है रात पे बिस्तर पे जाने के बाद, आपकी नींद अफेक्ट होगी। अगर नींद आई भी तो गहरी नींद नहीं आएगी आपको, बीच बीच में खुलती रहेगी, और आप संतुष्ट नहीं होंगे, फ्रेश नहीं होंगे
जी।
तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर भी आता है, नींद डिस्टर्ब रहती है। ऐसे लोगों को हमने देखा है जो हम कहते ना, ये तो मेरे दिमाग में जाता है किसी को देखने के बाद। मैंने एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके दिल में रहते हैं, या आप उनके दिल में रहते हो, और जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते आप उनके दिमाग में रहते हो। तो जो लोग दिमाग में जाते हैं ऐसे कहते हैं, तो उन लोग का सिर दर्द होगा क्योंकि दिमाग में जगह ही नहीं है
जी।
और आपने इन लोगों को अपने दिमाग में रखा है तो आपका सिर भारी होगा। फिर ये जो अलग प्रकार के सिर दर्द है, मैंने बोलने में भी ऐसे ही आता है कि लोग ये ना, इससे ये तो मेरे लिए सिरदर्द बन चुका है
जी,
है ना। तो ये सिरदर्द पैदा करेगा ये व्यक्ति, या वो घटना आपके लिए सिरदर्द पैदा करेगा। तो जो पुराने सिरदर्द है उसका कहीं ना कहीं जड़ एंगर में होता है
जी।
बहुत सूक्ष्म ये बातें हैं। एक ऐसे एंगर, रिसेंटमेंट, जेलसी आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करती है। इसके ऊपर बहुत सारा अभी लोग संशोधन कर रहे हैं, स्टडीज भी आ रही है। मुझे याद आ रहा है लुई है करके एक ऑथर है, मेटाफिजिकल हीलर है, उन्होंने बीमारियों के चार ही कारण बताए, क्रिटिसिज्म, एंगर, गिल्ट एंड रिसेंटमेंट। ये सब निगेटिव एनर्जी है। इसमें क्रिटिसिज्म, एंगर एंड रिसेंटमेंट, ये तीनों क्रोध है, माना चार में से तीन कारण उसने क्रोध बताया है, सिर्फ उसके शेड्स अलग है। तो जब हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वो गुस्सा है
जी।
और हम बदला चाहते हैं, और ये जो बदले की भावना है आपको हार्ट अटैक दे सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, आपको ब्रेन की बीमारी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है
जी। मतलब फिजिकल सिम्टम्स बहुत
पकड़ के रखते हैं ना, आपने पकड़ के रखा है, जितना आप यहाँ पे पकड़ के रखेंगे आपके अंदर कहीं ना कहीं वो पकड़ जाएगी एनर्जी, और आपकी खुशी चली जाएगी। सबसे बड़ा आपका नुकसान ये होगा कि आपकी खुशी नहीं रहेगी, और खुशी नहीं तो जीवन नहीं।
कई बार ये देखा, एक्चुअली मैं लास्ट वीक ही एक ओल्ड एज होम को मैंने विजिट किया था, तो वहां पर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, क्योंकि वो लाइफ के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से उनका पूरा पास्ट, कई बार उनके लाइफ पार्टनर उन्होंने खो दिए हैं, हेल्थ साथ नहीं दे रही है, एनर्जी उतना नहीं है वर्क करने की, तो उनको टाइम बहुत है, अभी रिटायर है, तो उनको अपना पास्ट बहुत याद आता है, तो उन लोगों का मन नहीं लगता, पॉजिटिव सोचना चाहते हैं पर सोच नहीं सकते। तो ऐसे समय में हम क्या करें, कैसे करें?
आपने बहुत अच्छी बात कही कि टाइम बहुत है। मैं इसके ऊपर सोच रहा था कि मनुष्य का जीवन कैसे तीन फेज में जाता है, और हमको पहले से ही इसके बारे में आगाज किया जाए, बता दिया जाए, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हमारा ज्यादा एनर्जी हमारी ना प्रिवेंशन में लगनी चाहिए, ऐसे मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। बचपन में हमारे पास टाइम बहुत होता है, एनर्जी भी बहुत होती है, धन नहीं रहता है, इसलिए हम धन के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हम बड़ा होते हैं, हम कमाने लगते हैं, तो धन भी आता है, एनर्जी भी रहती है, लेकिन टाइम नहीं रहता है परिवार के लिए, क्योंकि धन कमा रहे हैं, एनर्जी भी है। पर जब बूढ़े हो जाते हैं, जो आपने कहा, तो बूढ़ों के पास क्या टाइम ही टाइम है, धन भी है लेकिन एनर्जी नहीं रहती है। और बूढ़ापा माना क्या है कि आप फैग एंड पे है, अपना अंतिम पड़ाव पे है, और बहुत सारी घटनाएं आपने देखे हैं आपके जीवन में, 50-60 साल जितने भी लोग आए सब आपके आंखों के सामने हैं, और सभी लोग आपको सुख नहीं दे सकते हैं, तो उसमें से कुछ लोगों से आपको दुख मिला है। अभी जितने ज्यादा लोगों से आपको दुख मिला है, वो सब पेंडिंग फाइल्स मेरे अंदर पड़ी हुई है। और ओल्ड एज में क्या होता है, शक्ति की कमी रहती है, इच्छाएं रहती है बड़ी हुई, अपेक्षाएं रहती है, और बीमारियां होती है, तो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है
जी।
और ओल्ड एज होम जो आपने कहा कि इनके फैमिली मेंबर्स ने उनको रखा रहता, तो एक गुस्सा भी रहता है
जी।
तो ये सब इमोशंस पैक्ड होते हैं उस एज में, तो उस इमोशन के साथ वो जिंदगी निकाल रहे होते हैं। हालांकि उनके पास जिंदगी का अनुभव होता है, लेकिन सभी लोगों को जीवन जीने की कला नहीं आती इस एज में। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं अभी थाना में एक लेक्चर लिया मुंबई में, तो वहां पे मैंने देखा 86 ईयर ओल्ड व्यक्ति, आज भी वो टू व्हीलर चलाता है
जी।
और अंधेरे में आता है, बोलता है मेरे को चश्मा है, पर चश्मा लगा के मैं चलाता हूँ।
ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने।
ऐसे मैंने देखा कि जो लोग दिन भर में एक्टिव रहते हैं ना, किसी न किसी उनको कोई ना कोई हॉबी है। कि अभी ये लोग इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं जिनका मैंने बात किया, तो दिन भर उसका वो क्लब का काम चालू रहता है, वो गाइड करता है कैसे है। सुबह आते हैं, गाना गाते हैं लोग, वो लाफ्टर क्लब से जुड़े हुए हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कोई ऐसा स्कीम निकालते हैं, पब्लिक सेवा करते हैं। तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति की दिनचर्या इतनी बिजी है, उसके वजह से मैंने देखा फिजिकली और मेंटली वो बिजी है
जी।
तो इसके लिए निगेटिविटी के लिए टाइम ही नहीं है, प्रॉब्लम तब आता है जब व्यक्ति खाली बैठा है।
हाँ, फिर वो टीवी या न्यूज़पेपर, क्योंकि ओल्ड एज होम में पूरा दिन वो लोग टीवी देखते हैं, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, तो हम दोनों ने विजिट किया था, तो उन्होंने यही कहा कि कैसे भी करके हम इनको पॉजिटिव बातों में एंगेज रखना, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि वो पूरा टाइम नेगेटिव देखते
हैं। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाय द टाइम यू बिकम 60+, आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव में जब आप वृद्धाश्रम में आए हैं, तो चांसेस ज्यादा ये रहते हैं कि निगेटिव फाइल ज्यादा है। और ये न्यूज़पेपर और टीवी का जो आपने देखा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से भी जो ट्रिगर आते हैं वो निगेटिव ही आते हैं। आप न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज पढ़ो, इतने मर्डर हुए, इतने बलात्कार हुए, यहाँ पे ये स्कैंडल हुआ, स्कैम हुआ, डर पैदा होता है। ये न्यूज जब मेरे अंदर जाती है तो मेरे अंदर से भी वो क्या करती है, निगेटिव न्यूज को ही बाहर निकालते हैं। गीगो प्रिंसिपल जो कंप्यूटर में हम इस्तेमाल करते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप अंदर कचरा डालेंगे तो अंदर से कचरा ही निकलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि व्यक्ति का निगेटिव फाइल ही ज्यादा खुल रहा है। तो इट इज वेरी टफ। और इसका सोल्यूशन हमने जो देखा है कि जब तक, पहले भी हमने देखा ना, जब तक ये पॉजिटिव एक्टिविटी में अपने आप को बिजी नहीं करते, पॉजिटिव एक्टिविटी कोई बड़ी बात नहीं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, म्यूजिक है, उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं, आपके पास जिंदगी का अनुभव है ना, कुछ तो हॉबी आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी जिससे आप एंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अनफॉरगिवनेस का जो फाइल आपके अंदर पड़ा है वो फाइल कम खुलेगी और वो फ्रस्ट्रेशन कम खुलेगा। जैसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है ये कम हो जाते हैं। साथ में हम जरूर कहेंगे कि हमारे पास ब्रह्मा कुमारी में सबसे अच्छी सेवा करने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि एक वो सुबह ध्यान करते हैं, इस उम्र में नींद भी कम हो जाती है, तो 4-5 घंटा में नींद पूरी हो जाती है। कई लोगों को नींद नहीं आती तो रात भर परमात्मा को याद करते, सुबह जल्दी उठते हैं, वॉकिंग करते हैं, फिर हमारे इधर क्लास में आते हैं तो परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, फिर जो ऑफिस की सेवा होती है या कोर्स कराना होता है वो भी ये करते हैं, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना और उसमें स्पीच देना ये भी काम ये करते हैं। अभी मैं एक हमारे रिटायर्ड मैनेजर से बात किया, मुझे इतना अच्छा अनुभव लगा। उनको हार्ट की तीनों आर्टरी ब्लॉक है 99%, और उनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी था अराउंड 19%, मिनिमम 60% होता है वो 19%। बाईपास करने को भी तैयार नहीं, हालांकि बस पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल बाईपास करने को तैयार नहीं, क्योंकि रिस्क है, ऑपरेशन करते समय ऑन द टेबल जा सकते हैं। आखिर में वो ब्रह्मा कुमारी के पास आए और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसका बचना मुश्किल है, और ये हो गई 15 साल पहले की बात। आज वो 15 साल से पूरे भारत में नहीं, देश विदेश में जाके भाषण करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सुबह उठता हूँ, पैदल करता हूँ, सबको लेक्चर्स देता हूँ, मेरे को लगता ही नहीं मेरे को हार्ट अटैक आया और मेरे को बीमारी है। एट द एज ऑफ 68 ऑपरेशन नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात उनकी। मैंने ये विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे होता है। एज अ मेडिकल साइंस हमको पता है कि ये बहुत कठिन है। इनका नाम अग्निहोत्री है, ये चंडीगढ़ से है। तो अभी उनसे बात किया तो आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है। पर मैं भी सोचने लगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, पर प्रूफ मेरे सामने था उसका, और ऐसे एक दो नहीं अनेक लोग हैं। 68 की उम्र में इस व्यक्ति में मैंने इतनी ऊर्जा देखी जो मेरे में मैंने नहीं दिखी। पर ये एनर्जी आई कैसे, क्योंकि उनको विश्वास हुआ कि परमात्मा की शक्ति मेरे को यूज कर रही है। तो परमात्मा की शक्ति मैं उनके चेहरे पर, उनके चलन में महसूस कर रहा था, और उनके अंदर क्या भाव है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा और किसी को नहीं हो, मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको ये तकलीफ है। और फिर उन्होंने कहा कि कैसे परिवर्तन हुआ। तो मैं ये इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर ऐसे सीनियर सिटीजन्स है जो खाली बैठे परमात्मा की सेवा में लग जाए, तो जो निगेटिव तरफ एनर्जी जा रहे उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, एग्जाम्पल भी बहुत ही खूब दिया कि 68 के एज में ये बात ट्रिगर हुई उनके लाइफ में। कई बार हमको लोग ये कहते हैं आप तो कम उम्र के हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो कई ऐसा भी है इसके साथ जुड़ा हुआ।
हमारे ये पूरा सीरीज का लक्ष्य है सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग, माने जीवन जीने का अल्टीमेट पर्पस और सीक्रेट क्या है जिससे हमारा जीवन अल्टीमेट बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। और इन सब सीरीज में हम यही बता रहे कि कौन से सीक्रेट को हम अपने जीवन में धारण करें, ताकि परिस्थिति के आने के बाद सोचने के बजाय पहले से हम उसके लिए रेडी रहे। तो हम सब ये क्यों कह रहे हैं कि अभी आपके जीवन में परिस्थिति नहीं आई है तो आप पहले से तैयार रहे इसके बारे में कि ऐसा हो सकता है। तो ये प्रोग्राम सभी के लिए है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस प्रिवेंशन के ऊपर है
जी।
और प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने ज्ञान को बढ़ाना, योग्य व्यक्तियों से मार्गदर्शन लेना, जिसमें हम बता रहे हैं कि अगर आप समझो अभी मिडल एज में है या यंग एज में है, आपके जीवन में ये घटनाएं घट रही है, तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, अपने अंदर अनफॉरगिवनेस के इमोशन को मत रखिए। तो ज्ञान के आधार पर स्वयं को समझा कर, परमात्मा से योग लगाकर आप अपने अंदर शक्ति भरे और अपने आप को परिवर्तन करें, हो सकता है आगे आने वाली परिस्थितियों में आप बहुत सेफ रहे और यहां तक पहुंचे ही नहीं।
जी, कई बार ये भी पाया गया है कि ठीक है, ये तो आप राजयोग का बात कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान की बात कर रहे हैं, पर जैसे दुनिया में भी बहुत सारा ज्ञान है अलग अलग रूप में, क्योंकि अभी तक आपने जो चर्चा की वो चर्चा बहुत अच्छी है, मतलब उससे हमको प्रेरणा ही मिलेगी, हमारे दोस्तों को भी प्रेरणा मिलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा है?
यस, ये स्टेज आने की चांसेस है। हमको हमेशा परमात्मा के महावाक्य याद आते, तो मैं यहां पर भी परमात्मा के महावाक्य बताऊंगा कि वो कहते कि चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला, ऐसा एक श्लोक है। तो चढ़ती कला माना आप हमेशा आगे बढ़ रहे, ये बहुत अच्छी अवस्था है। लेकिन चलते चलते अगर आप विधि पूर्वक अभ्यास नहीं कर रहे, आप बराबर नहीं चल रहे हैं नियमों के अनुसार, या आप साधना नहीं करते, तो दो और कलाएं हैं। चढ़ती कला से हायर स्टेज है उड़ती कला, दैट इज फाइनल स्टेज। पर उड़ती कला नहीं तो कम से कम चढ़ती कला तो होना चाहिए। पर उसके बाद वाली जो स्टेजेस है वो है ठहरती कला, जो आपने स्टैग्नेंट कहा ना, ना मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना पीछे, मैं जहां हूं वहां भी ठहरा हुआ हूं। या उसके बाद जो आती है वो उतरती कला, माना आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। दीज आर पॉसिबल स्टेजेस जब आप इस मार्ग पर चलते हो। कई बार आपने होम्योपैथी के बारे में सुना होगा कि होम्योपैथी जब इलाज चालू हो जाता है तो आपके अंदर की बीमारी पूरी बाहर आती है, क्योंकि वो जड़ से निकाल के उसको बाहर फेंक रहे हैं। समथिंग लाइक दिस ऑल्सो हैपन्स इन मेडिटेशन। ये ध्यान का अभ्यास करते वक्त या इस मार्ग पर चलते वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर की पुरानी जो फाइल्स है वो खुलने लगती है। आप कोई भी ज्ञान पढ़ो, दुनिया में बहुत ज्ञान है, बहुत सारी साधना पद्धति है। चलते चलते ऐसा होता है कि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, वो अचानक जब बाहर आता है ना, तब हमको थोड़ा गाइडेंस चाहिए। इसलिए कहते कि गुरु चाहिए कोई तो, जो इस मार्ग में अनुभवी है। तो इस समय पे हमने देखा कि जब ये पुराने फाइल्स खुलने लगते हैं तो उस समय डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इलाज चल रहा है। कुछ लोग डर जाते हैं और हमको ये कहते हैं कि पहले ये नहीं था, अभी क्यों आ रहा है ऐसा
जी।
तो उस समय डरना नहीं चाहिए, इलाज हो रहा है, आपके अंदर के फाइल्स खुल रहे हैं और वो बाहर आ रही है बीमारी, उसको आने देना चाहिए।
ओके,
आप उधर स्टैग्नेंट हो सकते कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हम आगे कुछ नहीं करेंगे, यहां तक ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे फिर और ठहरती कला से नीचे चले जाते हैं। ये भी हमने देखा, उस समय धीरज रखना चाहिए, योग्य अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो आप उसमें से निकलते हैं। ये इसलिए आती है कि हमको क्रिएटिविटी नहीं आती है, हमारे अंदर के कुछ ऐसी बातें रहती है, क्योंकि बहुत जन्मों की बातें रहती है, वो बाहर आके ना बुद्धि को रियलाइजेशन को कम कर देती है, और फिर हमको ना सब एक जैसा ही लगता है।
हाँ।
कल भी वही था, आज भी वही है, माना वो खुशी और नवीनता नहीं आती, रूटीन में आ जाते हैं फिर
जी।
जिसको आपने कहा ना स्टैग्नेंट अवस्था, जैसे हम शहरों में देख रहे लोग, सब कुछ है, चल रहे, कार में जा रहे, एसी ऑफिस है, एसी कार है, पर ना खुशी नहीं है,
भीड़ में है लेकिन फिर भी भीड़ से अलग है,
अलग है और अकेले है,
अकेले है।
तो ये अवस्था आने के चांसेस रहते हैं, और मेरे ख्याल से ये भी एक प्रकार का ना ईगो है, सटल ईगो, कि समझ लिया हमने सब कुछ।
हाँ,
मुझे सब समझ में आ गया है क्या है करके। दिस इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली योगियों की अवस्था होनी चाहिए कि हर दिन हर क्षण नया हमको अनुभव होना चाहिए,
मतलब लर्निंग है हमारे लिए,
लर्निंग है। जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरे को सब समझ में आ गया, उस समय आपका ग्रोथ रुक गया है, समझना चाहिए। वी आर स्टूडेंट टिल एंड, अंत तक हमको समझते रहना चाहिए। और ये बच्चों का एटीट्यूड जो है सीखने का, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, इससे हमारी क्रिएटिविटी और एनर्जी एंथुजियाज्म बना रहता है। तो यस, डेफिनेटली ऐसी अवस्था आने के चांसेस है, लेकिन इससे बचने के लिए ये भी ध्यान में रखें कि मुझे हर क्षण सीखना है, हर व्यक्ति से सीखना है और हर दिन कुछ नया करना है। तो जब ये एटीट्यूड रखते हैं तो ये अवस्था आने के चांसेस
कम हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये बात को हमारे सामने रखा कि एक सीनियर सिटीजन की अवस्था क्या हो सकती है, लाइफ में बहुत सारे लॉसेस हुए रहते हैं, ओल्ड एज होम में पहुंचने के बाद तो डेफिनेटली ये फाइल खुलने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। बहुत गहराई से आपने बताया कि अगर मैं होल्ड करके रखती हूं तो शरीर के ऊपर किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ आज मेडिटेशन ले सकते हैं?
जरूर, हम सब अलर्ट होके बैठेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेके पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, दोनों हाथ दोनों पैर, छाती पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में लेकर जाए और देखे एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य सितारा चमक रहा है। हम ये दिव्य प्रकाश हैं, इस शरीर से बिल्कुल अलग है। ये शरीर भारी है पर हम बिल्कुल हल्के हैं। ये शरीर विनाशी है पर हम अविनाशी है। परमात्मा जो मुझ आत्मा का पिता है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, उससे सर्व शक्तियों का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरे अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। मैंने आज महसूस किया कि संपूर्ण जीवन में अनेक लोग जाने अनजाने में मुझे उनके द्वारा दुख मिलता है और इन सब लोगों से जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अगर मैं पकड़ के रखते हूं तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होने की संभावना है। इन सब लोगों को ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, परमात्मा के श्रीमद के अनुसार मैं सच्चे दिल से क्षमा करने के लिए तैयार हूं। इन सब लोगों को मैं सच्चे दिल से क्षमा करती हूं, क्षमा करती हूं, क्षमा करती हूं। मैंने आज महसूस किया कि ऐसे लोग हमारे जिंदगी में आते रहते हैं और वो हमें स्वयं शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे इनसे गलती हुई है वैसे मुझसे भी जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हुई है, तो मैं स्वयं को भी इसके लिए क्षमा करते हूँ, क्षमा करते हूँ। अन्य लोगों को भी मैं उनके गलती के लिए क्षमा करते हूँ और अन्य लोगों से भी मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगते हूँ। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। अब मैं हल्का महसूस कर रहे हूँ और मैंने और भी रियलाइज किया कि दिन भर मुझे ईश्वरीय ज्ञान चिंतन में, श्रेष्ठ कार्य में अपने को बिजी रखना है। और मैं लक्ष्य रखती हूँ कि संपूर्ण दिवस भर मेरी दिनचर्या मैं ऐसे बनाए रखूंगी कि मेरा चिंतन मनन श्रेष्ठ संकल्पों में रममान रहे। इससे मेरे अंदर की नकारात्मक फाइल खुलने के चांसेस, संभावनाएं बहुत कम है। मैं स्वयं को इन श्रेष्ठ संकल्पों में बिजी रखूंगी, ईश्वरीय कार्य में स्वयं को बिजी रखूंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। मैं संपूर्ण दिवस भर इन सभी बातों का अटेंशन रखूंगी, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करने से मैं शांति का अनुभव कर रही हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति, शांति, शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, इतना सुंदर आपने मेडिटेशन करवाया हमको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस महसूस कर रही थी मैं खुद भी यहाँ बैठकर, सो थैंक यू अगेन। दोस्तों, आज हमने ये बात बहुत गहराई से जानी कि जब हम कोई बात को पकड़ कर रखते हैं तो कैसे क्लॉट हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, कैंसर हो सकता है। डॉक्टर सचिन ने हमको एक बात बहुत बताई कि जो अगर हम माफ नहीं करते, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल इमोशन है और जिसकी वजह से ये अधिकतर प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में क्रिएट होते हैं, शारीरिक बीमारियां उसी की वजह से अधिक प्रमाण में होती हैं। और दूसरा, अगर हम फ्री हैं और बहुत मुश्किल है हमारे लिए पॉजिटिव सोचना, तो हम कुछ अपने आप को क्रिएटिव वर्क में बिजी रखें तो अपने आप ही वो पॉजिटिविटी अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगी। आप इन सब बातों पर विचार कीजिए। हम फिर से मिलेंगे नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।